तारीख 13 दिसंबर दिन रविवार। नमस्कार, भारत के साथ मैं समीर आत्मज मिश्र। पेरिस में लंबी खींचतान के बाद हुआ जलवायु समझौता, 195 देशों ने दी सहमति।
J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat.
दुनिया भर के कई नेताओं ने समझौते को बताया ऐतिहासिक। भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा,
ये एक आश्वस्त करना है नई पीढ़ी को कि हम आपके लिए एक अच्छी पृथ्वी छोड़ेंगे।
भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापान के साथ हुआ करार। खास बातचीत सुनेंगे बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से।
पापा वॉलीबॉल खेलते थे, कभी कभी चेन्नई टूर्नामेंट्स के लिए जाते थे। नॉर्मली मम्मी पापा कभी कभी तमिल में भी बात करते हैं और मेरे को भी थोड़ा तमिल समझ में
होंगी। खेल की भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार फैसल मोहम्मद अली से। पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर एक समझौते को करीब 200 मुल्कों की सहमति हासिल हो गई है। फ्रांस के विदेश मंत्री लारूंग फेबियस ने नए समझौते को अपनाए जाने का ऐलान किया, जिसका स्वागत वहां तालियों की गड़गड़ाहट और नारों से हुआ। समझौते में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि पहली बार सभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन कम करने को लेकर वायदा किया है। हालांकि समझौते का कुछ हिस्सा ही कानूनी तौर पर बाध्य होगा, जबकि कुछ को स्वेच्छा से लागू करने की छूट दी गई है। सऊदी अरब में आज हुए निकाय चुनावों के वोटों की गिनती हो रही है। इस चुनाव में पहली बार महिलाओं को वोट देने के साथ साथ चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी हासिल हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि 1,30,000 औरतों ने वोटरों के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, जबकि करीब 1,000 औरतें चुनाव में उम्मीदवार थीं। हालांकि महिला उम्मीदवारों को सीधे तौर पर प्रचार की इजाज़त नहीं दी गई थी। कई जगहों पर मुल्क में हुए इस फैसले को ऐतिहासिक बताया गया है, लेकिन कुछ जगहों जैसे रियाद में मौजूद वोटर अब्दुल्ला मैतूब का कहना था,
हमें
मालूम है कि औरतें समाज का आधा हिस्सा हैं, लेकिन उनकी जगह यहाँ नहीं है। उनकी जगह घर की देखभाल करना और नई पीढ़ी को बड़ा करना है। लेकिन अगर हम उन्हें घर से निकलने की इजाज़त दे देंगे और इस तरह के कामों में लगाएंगे तो मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। ये थे सऊदी अरब के एक वोटर के शब्द। सीरिया के होम्स में हुए बम हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि काफ़ी लोग घायल हुए हैं। हमले में 2 धमाके हुए, इनमें से एक कार में रखे विस्फोटकों के उड़ने से हुआ। इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि हमले में उसका हाथ था। हमला तब हुआ जबकि एक समझौते के तहत सीरिया की सरकार का शहर के हिस्सों पर कब्जा मजबूत हुआ है। अमरीका के राष्ट्रपति के उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल होने की कोशिश में लगे रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप को एक सऊदी राजकुमार से खड़ी खोटी सुननी पड़ी है। ट्रंप ने बयान दिया था कि अमेरिका में मुसलमानों के आने पर रोक लगा दी जानी चाहिए। सऊदी राजकुमार और अरबपति अल वालिद बिन तलाल ने ट्वीट करके कहा है कि डोनाल्ड न सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी बल्कि सभी अमरीकियों के लिए कलंक हैं और सलाह दी है कि राष्ट्रपति पद की रेस से वो हट जाएं, क्योंकि वो कभी नहीं जीतेंगे। प्रिंस तलाल को अरब दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है। ट्रंप ने कहा है कि अल-वलीद तलाल अपने पिता के पैसे से अमरीकी राजनेताओं को नियंत्रित करना चाहते हैं। बुरुंडी में सेना का कहना है कि शुक्रवार को ही हिंसा में 87 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी बुजुमरा में हुई इस हिंसा में 8 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। लंबी खींचतान, विचार विमर्श और मोलभाव के बाद आखिरकार पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समझौते की मंजूरी मिल गई। इस समझौते को 195 देशों ने अपनी स्वीकृति दी है। समझौते में दुनिया भर में तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य तय किया गया है, तो वहीं विकासशील देशों को इस दिशा में काम करने के लिए हर साल $100 अरब के फंड की व्यवस्था की बात भी कही गई है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं फैसल मोहम्मद अली।
समझौते को अपनाए जाने के ऐतिहासिक क्षणों के लगभग घंटे भर पहले अहम भागीदारों जैसे विकासशील देशों के समूह G77 और भारत और चीन जैसे देशों ने कह दिया था कि वो पेरिस मसौदे का समर्थन करते हैं। پھر وہ گھڑی آ گئی جب فرانس کے ودیش منتری لورونگ فیبیوس نے سمیلن میں حصہ لے رہے دیشوں کے پرتنیدھیوں کو پیرس سمجھوتے کو سویکارنے کا نیوتا دیا. اب میں کوپ کو اس بات کا نیوتا دیتا ہوں کہ وہ پیرس سمجھوتے کے مسودے میں موجود نرنیوں کو سویکرتے دیں. کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے میں لوگوں کی سکاراتمک پرتکریا دیکھ سکتا ہوں. مجھے کوئی آپتی نظر نہیں آتی. پیرس سمجھوتا سویکار ہوا. انہوں نے ہاتھ میں موجود لکڑی کے بنے ہتھوڑے نما چیز کو میز پر ہلکے سے مارا اور یہ جتایا کہ سمجھوتا سویکار ہو گیا ہے. تو ہال میں موجود لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نعرے لگا کر تالیوں سے اس کا سواگت کیا. اس سمجھوتے کو 195 دیشوں کی سہمتی حاصل ہے. نئے سمجھوتے میں کاربن اتسرجن میں کٹوتی کی بات کہی گئی ہے جو سال 2020 سے لاگو ہوگا. یہ پہلی بار ہے جب جلوایو پریورتن پر سمجھوتے میں کاربن اتسرجن میں کٹوتی پر سبھی دیشوں میں سہمتی بنی ہے. سمجھوتے میں کہا گیا ہے کہ سبھی دیش کاربن اتسرجن میں جلد سے جلد کمی لائیں گے. ساتھ ہی گرین ہاؤس گیسوں اور اس کے سروت کے بیچ 2020 تک سنتولن بنایا جائے گا. ویشوک تاپمان کو 1.5 ڈگری سیلسیس پر سیمت کرنے کی کوشش کا لکش سمجھوتے میں رکھا گیا ہے. ان سب کی ہر 5 سال میں سمیکشا کی جائے گی. 2020 تک کاربن اتسرجن میں کمی لانے کے لیے وکاسشیل دیشوں کو ہر سال 100 ارب ڈالر کی مدد دی جائے گی جسے اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے. جلوایو پریورتن سمجھوتے پر سبھی دیش اگلے سال 22 اپریل کو اوپچارک روپ سے ہستاکشر کریں گے.
یہ تھے فیصل محمد علی. سمجھوتے میں سب سے زیادہ اڑچنیں وکاسشیل اور وکست دیشوں کے ہتوں کے چلتے آ رہی تھیں. اس کی وجہ سے سمیلن کو ایک دن آگے بھی بڑھانا پڑا. لیکن اچانک ایسا کیا ہوا جو سبھی پکش اس کے لیے سہمت ہو گئے؟ یہی سوال پوچھا میں نے سمیلن میں موجود بی بی سی سنواددتا نوین کھڑکا سے.
دیکھیے اب یہ جو خاص کر کے وکست اور وکاسشیل دیشوں کے بیچ جھگڑا کی جو بات تھی, ایسا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ سمجھوتا ہوا اور اسی لیے یہ سہمتی ہو گیا. لیکن دیکھیے اب یہ کہنا جتنا آسان تھا اب کرنے میں بہت چنوتیاں ہیں. جیسے کہ امریکی ودیش منتری جان کیری نے خود کہا کہ آج یہ جو سہمتی ہوئی ہے اس کی سارتھکتا تب ہوگی جب ہم یہ لاگو کریں گے. تو اس لیے جو یہ لاگو کرنا جو ہے یہ بہت ہی کٹھن کام ہے. اور بھارتیہ پریاورن منتری پرکاش جاویڈکر نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو نیا سمجھوتا کے تحت وکست دیشوں کی ایمیشنز نگیٹو میں رناتمک شونیہ بھی نہیں رناتمک جانے چاہیے تاکہ وکاسشیل دیشوں کو ایمیشن کی کوٹا اسپیس ملے. اب دیکھیے اس طرح کی انٹرپریٹیشن اب جو اب کے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اور تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سندھی جو ہے یہ سہمتی جو ہے واقعی میں یہ لاگو کر سکیں گے یا نہیں.
اس کے علاوہ نوین جی کئی پرتکریائیں آئیں جیسا آپ بتا ہی رہے ہیں, جان کیری کا اور بھی کئی نیتاؤں کی پرتکریائیں آئی ہیں اور کافی اس کی پرشنسا ہو رہی ہے. ایتہاسک کہا جا رہا ہے, ہسٹوریکل کہا جا رہا ہے واسطو میں آپ تو وہاں پہ تھے, آپ کو کیا لگا اور لوگوں سے بات چیت کر کے؟
دیکھیے ایک حساب سے جو تقریباً 20 سال سے یہ بیٹھک یہ جو وارتا یہ سب ہو رہی ہے نا, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یقیناً یہ ایتہاسک ہے کیونکہ سہمتی تو ہوئی ہے اور جو آنکڑے بھی دیے ہیں کہ 2 ڈگری سے زیادہ نہیں جانا ہے. ویسے اگر کر سکے تو 1.5 ڈگری تک ہی تاپکرم کو رکھنا ہے وشو کی اوسط تاپکرم کو یہ جو اودیوگک یوگ سے اگر آپ تلنا کریں. تو دیکھیے یہ واقعی میں اس حساب سے ہے لیکن وہی جو پرشن وہی اٹھتا ہے کہ آپ نے لکھ تو دیے بول تو دیے لیکن آپ یہ لاگو کر پائیں گے. کیونکہ دیکھیے جو فوسل فیول جس سے دنیا چلتی ہے جیوک ایندھن اس سے آپ پا پائیں گے اتنی آسانی سے؟ پرشن ابھی یہی ہے. اور اسی لیے اب دیکھیے جو میں نے بھارتی منتری کی جو بات کی اب اس طرح کی انٹرپریٹیشن کی باتیں آئیں گی اب تو چنوتیاں اس طرح سے بڑھتے رہیں گے.
جی اگر وکاسشیل دیشوں کی بات کی جائے جو سمجھوتے میں آیا ہوا ہے تو ان کو 100 ارب ڈالر ہر 5 سال پہ دیے جائیں گے, کیا یہی ایک بندو تھا یا اس کی ان لوگوں کی طرف سے کوئی خاص مانگ تھی کہ ایسا کچھ کیا جائے اور کیا یہی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ سمجھوتے پر راضی ہوئے؟
اب دیکھیے پیسے کے معاملے میں بھی پیسہ بھی ایک اہم مدعا تھا. وکاسشیل دیشوں کا ترک یہی تھا کہ ٹھیک ہے ہم بھی کاربن کٹوتی کریں گے لیکن پیسے دے دو, پیسہ کہاں ہے, کوئی دکھایا پیسہ؟ تو اب یہ جو سہمتی ہوا ہے اس میں پیسوں کی کچھ کمٹمنٹ ہوئی ہے اور کمٹمنٹ تو ویسے पहले भी हुआ करते थे, इसीलिए भारतीय पर्यावरण मंत्री ने प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात पे जोर दी है कि अब कमिटमेंट जो है वो लागू अगर कोई करते हैं तब ये जो सहमति की जो सार्थकता तब होगी।
ये थे बीबीसी संवाददाता नवीन खड़का जो कि पेरिस में हो रहे जलवायु परिवर्तन के दौरान वहां मौजूद थे। सम्मेलन में विकसित देशों पर आरोप लग रहे थे कि वो अपने हितों को ध्यान में रखकर समझौता मसौदा तैयार कर रहे हैं। आरोप लगाने वाले देशों में भारत भी शामिल था, लेकिन समझौते का भारत ने भी स्वागत किया है। सम्मेलन में भाग लेने पेरिस गए भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बीबीसी संवाददाता नवीन खड़का ने बात की।
ये मुझे लगता है बहुत बड़ा सफलता है विश्व के लिए, क्योंकि विश्व के 190 से ज़्यादा देश इकट्ठा आकर उन्होंने अगर ये काम किया है तो इसकी बहुत सराहना होगी, और ये एक आश्वस्त करना है नई पीढ़ी को कि हम आपके लिए एक अच्छी पृथ्वी छोड़ेंगे, कोई और नहीं बिगाड़ेंगे। तो ये सब ने मिलकर एक वचन दिया है आने वाली पीढ़ियों को, और यही इसकी विशेषता है, और ये रोज़ काम करने का विषय है। भारत की सफलता इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो क्लाइमेट जस्टिस का विषय रखा, जो लाइफस्टाइल का विषय रखा, वो भी आया इसमें, और उसकी सारे दुनिया ने सराहना की, और जिस तरह का सोलर अलायंस पेश किया उसकी भी खूब प्रशंसा हुई, और जो भी भारत को चाहिए था वो सब उस एग्रीमेंट में मिल गया है। अब हम जोर से काम करेंगे।
सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा है कि अभी भी जो क्लाइमेट जस्टिस की बात कही कि ये कोशिश की गई है कि वो सिर्फ भारत का कंसर्न दिखाया गया?
नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है, ये पूरे विश्व का है, और इसलिए वो इस तरह का इंटरप्रिटेशन करेक्ट नहीं।
साफ सुथरी बिजली बनाने के लिए हमें पैसा चाहिए और हमें आगे भी बढ़ना है।
मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ साफ सुथरी बनाना, बिजली बनाना, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, तो दुनिया का, विश्व का इन्वेस्टमेंट आएगा।
ये थे भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। भारत और जापान ने कल रक्षा, परमाणु ऊर्जा और मुंबई अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन के नेटवर्क को बनाने को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस बुलेट ट्रेन की लागत 98,000 करोड़ रुपए आएगी। बुलेट ट्रेन की शुरुआत करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य चुनावी वायदों में से एक वायदा भी था है, लेकिन बुलेट ट्रेन की व्यावहारिकता को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सुनिए सुशीला सिंह की यह रिपोर्ट।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता हुई और दोनों देशों ने 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में रक्षा उपकरणों, बुलेट ट्रेन और असैन्य परमाणु समझौता ज्ञापन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौते दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकी को दर्शाते हैं।
द मेमोरेंडम वी साइन ऑन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन इज मोर देन
हमने असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में जो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं वो स्वच्छ ऊर्जा और वाणिज्य से कहीं ज्यादा है। ये एक नए स्तर के आपसी विश्वास और रणनीतिक साझेदारी का संकेत देता है।
इन समझौतों के तहत जापान बुलेट ट्रेन और अन्य हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तकनीक के अलावा 0.1% की ब्याज दर से कर्ज भी देगा। 98,000 करोड़ की लागत से मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहला बुलेट ट्रेन नेटवर्क बनेगा। ये बुलेट ट्रेन करीब 500 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे के बदले 2 घंटे में पूरा करेगी। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी और भारत के रेल मंत्रालय ने 2 साल पहले ही हाई स्पीड रेल बनाने और चलाने संबंधी पहलुओं का अध्ययन शुरू किया था। लेकिन कितना फायदे का सौदा होगी ये ट्रेन? वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बी अकलेकर कहते हैं,
कॉस्ट एलिमेंट जो है 980 बिलियन रुपीज, जिसका सब बात कर रहे हैं, वो इंडिया वापस कैसे देगी पैसे? उसके लिए उन्होंने रियल एस्टेट जो प्लेटफॉर्म और स्टेशनों के बगल में बनेगी उससे पैसा मिलेगा, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड है। पैसेंजर पे इतना डिपेंडेंस नहीं है पहले इनिशियल ईयर। 7 साल का पीरियड दिया है उन्होंने, टेक्निकली फिजिबल उन्होंने सिर्फ 500 किलोमीटर एलिवेटेड लाइन, अलग लाइन होगी, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए। 2800 रुपए उसका किराया रखा है रेलवे अधिकारी, और जो जिन्होंने डील किया वो ऐसे कह रहे हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री जो है उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, तो 2025 तक चीजें पूरी तरह बदल जाएंगी। और एक अहम मुद्दा है कि क्लाइमेट चेंज का जो बातें हो रही है से एयरलाइन इंडस्ट्री विल बी अफेक्टेड इन बिग वे।
उधर भारत ने कहा है कि जापानी नागरिकों को 1 मार्च 2016 से आगमन वीजा की सुविधा दी जाएगी। शिंजो ने भी भारत के लोगों को वीजा नियमों को उदार बनाने का भरोसा दिलाया। शिंजो आबे का कहना था
हम अगले 5 सालों में चाहेंगे कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र से लोग छोटी अवधि के लिए जापान आएं। हम मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीजा में ढील देंगे। प्रिय भारत के लोगों, जापान आएं, हम आपका स्वागत करते हैं।
दोनों नेताओं ने साझा विजन 2025 भी जारी किया। इस शिखर वार्ता से पहले नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे ने भारत और जापान बिजनेस लीडर फोरम को भी संबोधित किया। सुशीला सिंह, BBC दिल्ली।
कार्यक्रम में अभी आगे है खेल जगत की खबरें और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से बातचीत, लेकिन अभी एक नज़र डालते हैं अखबारों पर। हमारे साथ थे स्टूडियो में फैसल मोहम्मद अली हैं तमाम अखबारों के साथ। फैसल साहब, क्या खबर?
समीर, खबरों की देखें तो अंग्रेज़ी और हिंदी अखबारों में थोड़ा अलग अलग है, मतलब जगहें जो दी गई हैं इंडिया और जापान के बीच जो कल शिंजो आबे की यात्रा के दौरान जो समझौते हुए हैं उस पर। और दूसरा ये है कि अंग्रेज़ी अखबारों में ज़्यादा जो प्रोमिनेंस है वो पेरिस में क्लाइमेट डील जो हुआ है उसमें। अगर हिंदी अखबारों की बात करें तो नवभारत टाइम्स कहता है एटमी रिश्तों में बुलेट सी तेज़ी, मतलब बुलेट ट्रेन और एटम बम को ले, मतलब परमाणु समझौता जो हुआ दोनों को उन्होंने साथ साथ मिला दिया है। दैनिक जागरण का कहना है बुलेट ट्रेन को मिली रफ्तार, सस्ती दर पर जापान देगा 80,000 करोड़ रुपये का कर्ज। और हिंदुस्तान का कहना है जापान की मदद से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन हाई स्पीड ट्रैक पर भारत और जापान, ये अमर उजाला का कहना है। और जनसत्ता कह रहा है मोदी आबे ने चलाई दोस्ती की बुलेट ट्रेन,
वाह।
और दैनिक भास्कर लेकिन इन सब से अलग है, उसकी हेडलाइन, उसने कहा है कि इस गति से कैसे डिजिटल होगा इंडिया। उनका कहना है कि 2.5 लाख पंचायतों का लक्ष्य था डिजिटल बनाने के लिए, लेकिन अभी तक मात्र 3500 में ही सरकार जो है वो ब्रॉडबैंड पहुंचा पाई है। साथ साथ उनका एक हेडलाइन है तेज़ी से बूढ़ी हो रही है दुनिया, कहा है कि चीन में 21.2 करोड़ लोग बुज़ुर्ग हो गए हैं, यहाँ काम करने वाले 2040 तक 10% कम हो जाएंगे चीन में, और दुनिया में 90.1 करोड़ बुज़ुर्ग जो हैं पूरी दुनिया में कहते हैं। अंग्रेज़ी अखबारों को की बात करें तो पेरिस क्लाइमेट डील की बात है। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि पेरिस क्लाइमेट डील जो है वो समझौता हो गई है, उस पर एम्स टू कैप ग्लोबल वार्मिंग एट 1.5 सेल्सियस। हिंदू का कहना है कि हिस्टोरिक पेरिस क्लाइमेट पैक्ट पुट वर्ल्ड ऑन ग्रीन पाथ, और पायनियर में भी न्यूक्लियर डील को ही लेकर है। इंडियन एक्सप्रेस में जो है इसी पर एक अच्छी हेडलाइन, हिस्ट्री मेड इन पेरिस, वर्ल्ड रीचेस डील टू सेव अर्थ, जो कि प्रकाश जावड़ेकर का इंटरव्यू जो आप सुनवा रहे थे उसमें भी उन्होंने कहा था। इसमें साथ साथ जो हरियाणा में जो चुनाव हुए उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि वहाँ जो लोग पढ़े लिखे हुए नहीं है और उसमें शैक्षिक बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे अलग हो गए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। संडे टाइम्स ने, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स ने जो माफ़ कीजिएगा टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो इस पर एक हेडलाइन दी है वो जापान और भारत के बीच जो समझौता हुआ है ख़ासतौर पर परमाणु समझौता, उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि जापान ने जो है भारत के साथ परमाणु समझौता किया है, लेकिन साथ साथ जो है दक्षिणी चाइना सी में भारत उसका समर्थन करेगा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद फैसल मोहम्मद अली अखबारों की समीक्षा के लिए। नमस्कार, भारत आप सुन रहे हैं समीर आत्मज मिश्र से। और अब पिछले दिनों अगर आपको याद होगा तो इंडियन बैडमिंटन लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी, जिसमें भारत की साइना नेहवाल और पीवी सिंधु छाई रही। आज हमारे साथ न्यूज़ मेकर में हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु से बात की हमारी सहयोगी राखी शर्मा ने।
पीवी सिंधु, बहुत बहुत स्वागत है आपका BBC हिंदी पर।
थैंक यू।
सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि प्रीमियर बैडमिंटन लीग की टीम चेन्नई स्मैशर्स के साथ आप जुड़ गई हैं, कैसा लग रहा है इस टीम के साथ जुड़ना?
मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत वेरी थैंकफुल, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने चेन्नई स्मैशर्स ने मेरे को दे टुक मी। हमारा पूरा टीम अच्छा कोशिश करके विल गिव 100%।
एक और चीज जिस पर इस वक्त सबका ध्यान जा रहा है वो है नीलामी राशि जो आप पर खर्च की गई है चेन्नई स्मैशर्स ने, वो है $95,000, यानी तकरीबन 64 लाख रुपए। तो एक्सपेक्ट किया था आपने इतना बड़ा अमाउंट खुद पर?
आई डिडंट एक्सपेक्ट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पता नहीं था कि मैं, क्योंकि हम लोग टूर्नामेंट में थे एक्चुअली, इंडोनेशियन टूर्नामेंट में, और हम लोग फ्लाइट में थे तब ऑक्शन हो रहा था, तो हमको पता नहीं था. तो नेक्स्ट डे हमको पता चला कि कौन कौन क्या क्या प्लेयर्स है, किसको कितना है सब. तो आई वॉज रियली हैप्पी.
सिंधु, चेन्नई आपके लिए कोई अनजान शहर नहीं है और इसकी कुछ वजह भी है. आप इसे जाना चाहूंगी, चेन्नई के साथ क्या कनेक्शन है आपका?
चेन्नई एक्चुअली मेरे मम्मी चेन्नई में पढ़ती थी, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चेन्नई. तो बहुत फ्रेंड्स सब लोग हैं, मम्मी के फ्रेंड्स सब लोग हैं. तो उसके बाद हैदराबाद आ गई. मी आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हैदराबाद.
और कुछ चेन्नई का कनेक्शन आपके फादर की साइड से भी है? वॉलीबॉल प्लेयर रहे हैं वो?
मतलब हाँ, पापा वॉलीबॉल खेलते थे, पर कभी कभी चेन्नई टूर्नामेंट्स के लिए जाते थे. पर नॉर्मली मम्मी पापा कभी कभी तमिल में भी बात करते हैं और मेरे को भी थोड़ा तमिल समझ में आती है.
तो मतलब जो आपके ओनर हैं साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार विजय कांत, जिनकी टीम है ये चेन्नई स्मैशर्स, उनसे बातचीत हुई है अभी तक?
बहुत अच्छे मोटिवेट कर रहे हैं टीम प्लेयर्स को, एंड हमारे टीम प्लेयर्स भी बहुत एनकरेजिंग है, एंड वी ऑल गेट टुगेदर वेरी वेल, एंड आई थिंक वी विल रियली गिव आवर बेस्ट फ्रॉम आवर साइड. एंड टीम ओनर भी बहुत हमारे साथ बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू हिम.
तो आपने विजयकांत की मूवीज देखी हुई है पहले?
नहीं देखी थी, पर कभी कभी ऐसा टीवी ऐसा मतलब ऑन करके ऐसे तमिल में नॉर्मली चैनल चेंज करती थी, तो कभी कभी आते रहते हैं उनका, तो उतना मैं नहीं देखती हूँ, पर पता है कि बहुत बड़ा हीरो है.
सिंधु, आपकी सक्सेस पर बात करते हैं. अब पिछले कुछ हफ्ते अच्छे रहे हैं आपके लिए. मकाऊ ओपन का टाइटल आपने लगातार तीसरी बार जीत लिया. ये मकाऊ के साथ में सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी क्या खास रिश्ता है, आप हमेशा वहां जाकर टाइटल जीतती हैं?
मैं बहुत खुश हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक यू. एंड हाँ, मैं तीन बार जीती थी मकाऊ में. आई थिंक इट इज माय फेवरेट प्लेस आई फील, क्योंकि एवरीबॉडी सब लोग बोल रहे थे कि मकाऊ तेरा फेवरेट प्लेस है, तू मकाऊ में जीत रही है. लास्ट थ्री टाइम्स से जीती थी. आई थिंक आई फील दैट इट इज माय लकी प्लेस एज वेल.
और सिंधु, बैडमिंटन की लीग तो पहले भी शुरू हुई थी 2 साल पहले इंडियन बैडमिंटन लीग के नाम से, लेकिन फिर कुछ कारणों की वजह से वो बंद हो गई और 2 साल तक लीग नहीं हो पाई. तो आपको लगता है कि इन 2 सालों में प्लेयर्स को थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है, वरना इंटरनेशनल लेवल पर और अच्छा उनका प्रदर्शन हो सकता था?
ऑफ कोर्स, वो पहले IBL हुआ था तो बहुत सक्सेस हुआ था और बहुत मोटिवेशन और बैडमिंटन को भी एक रिकॉग्निशन आया था. फिर उसके बाद अभी PBL, एंड ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट अखिलेश दास गुप्ता जी भी बोले थे कि हाँ अभी से हर एक साल होगा PBL. सो आई थिंक इट शुड बी अ वेरी गुड सक्सेस, एंड ऐसे ही एवरी ईयर आई विश इट शुड गो ऑन.
और एक सवाल जो बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहते हैं कि साइना नेहवाल के खिलाफ कोर्ट पर उतरते हुए क्या चल रहा होता है आपके मन में, ये सब साइड में रख कर कि आप दोनों एक ही देश को रिप्रेजेंट करती हैं?
हाँ ऑफ कोर्स वी विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर सम अदर डे, पर हाँ ऑब्वियसली एक ही जीतना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली वो ग्रज रहेगा कि हम ही जीतना है. तो गेम भी ऐसे ही खेलते, पर आउटसाइड द कोर्ट वी जस्ट नॉर्मल, यू नो, नॉर्मल फ्रेंड्स टाइप.
और कोर्ट के बाहर आप दोनों के बीच किस तरह की केमिस्ट्री है, साथ में घूमना फिरना होता है?
एक्चुअली उतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों को बैक टू बैक टूर्नामेंट रहता है. सो अभी इस टूर्नामेंट में मैच के पहले तो 2 दिन जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं मैच खेलना, एक एक दिन एक एक मैच, तो रेस्ट लेना पड़ेगा. नॉट रियली वी गेट आउट एंड गो आउट एंड वॉच सम, यू नो, प्लेसेस, नॉट रियली.
हमसे बातचीत के लिए PV सिंधु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
हाँ, थैंक यू.
बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु से बात कर रही थी राखी शर्मा. और अब एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहेंगी.
लीबिया में जारी अस्थिरता और इस्लामिक स्टेट के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पश्चिमी देशों, अमेरिका और इटली के विदेश मंत्री रोम में एक बैठक कर रहे हैं. बैठक में क्षेत्रीय देशों के नेता भी शामिल होंगे. बैठक में लीबिया के अलग अलग राजनीतिक और हथियारबंद गुटों पर यह दबाव बनाया जाएगा कि वो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावित संयुक्त सरकार के प्रस्ताव को मान लें. पश्चिमी मुल्कों को डर है कि IS लीबिया में मौजूद हालात का फायदा उठाकर वहां अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है. जेनीवा में रूस, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि सीरिया संकट पर बातचीत कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टाफन द मिस्तूरा ने कहा है कि बैठक में 40 समूहों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। इसमें ईरान और तुर्की भी शामिल होंगे। इससे पहले 2014 में इसी मामले पर हुई बैठक विफल हो चुकी है। सीरिया की सरकार ने उस बैठक में विपक्षी गुटों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। अपनी 3 दिनों की यात्रा के बाद जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे आज सुबह देश वापस चले जाएंगे। उनके दौरे के बीच भारत और जापान ने असैन्य परमाणु समझौता, तेज रफ्तार ट्रेन टेक्नोलॉजी और सैन्य उपकरण तकनीक ट्रांसफर जैसे समझौते किए हैं। सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट दुबई में खत्म हो रहा है। भारत की साइना नेहवाल पहले ही हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है।
और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। दुबई में आयोजित की जा रही वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में जापान की नोजोमी ओकुहारा महिला एकल वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में उनका सामना चीन की वांग यीहान से होगा। कल खेले गए सेमीफाइनल में नोजोमी ओकुहारा ने शीर्ष वरीयता हासिल और विश्व चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन को आसानी से 21-11, 21-12 से बात दी। जबकि दूसरे सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता हासिल वांग यीहान ने थाईलैंड की रतचानोक इंतानोन को केवल 36 मिनट में ही 21-12 से हराया। इसी चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का फाइनल चौथी वरीयता हासिल डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन और दूसरी वरीयता हासिल जापान के केंटो मोमोतो के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में मोमोतो ने डेनमार्क के यानो योर्गेंसन को 21-19, 21-18 से हराया, तो वहीं विक्टर एक्सेलसेन ने शीर्ष वरीयता हासिल चीन के चेन लोंग को 21-12, 21-17 से बात दी। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने होबार्ट में खेले गए पहले टेस्ट मैच को कल तीसरे ही दिन अपने नाम करते हुए वेस्टइंडीज को एक पारी और 212 रन से करारी मात दी। इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 4 विकेट पर 583 रन के विशाल स्कोर पर समाप्त घोषित कर दी, जिसके बाद वेस्टइंडीज की पहली पारी 223 रनों पर सिमट गई और उसे 360 रनों से पिछड़ कर फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। हालांकि डेरेन ब्रावो ने 108 रनों की शतक पारी खेली, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने 45 रन देकर 4 और नाथन लियल ने 43 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। लेकिन फॉलो ऑन के बाद तो वेस्टइंडीज की दूसरी पारी केवल 148 रनों पर ढह गई। केवल सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्राथवेट 94 रन बनाकर विकेट पर टिकने का दमखम दिखा सके। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के जेम्स पैटिनसन ने 27 रन देकर 5 और जोश हेजलवुड ने 33 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। उधर भारत के डिस्कस थ्रोअर विकास गौड़ा ने अगले साल रियो में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और आपको बता दें कि अमेरिका में एक ओर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इन दिनों कुछ लोग जहर उगल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वहां एक ऐसा शहर भी है जहां स्थानीय नगर परिषद चुनाव के बाद मुसलमान बहुमत में आ गए हैं। मिशिगन राज्य का ये हैमट्रिमिक शहर है जहां कभी पोलिश कैथोलिक समुदाय बहुमत में था, लेकिन पिछले 2 दशकों में उनकी आबादी अब मुश्किल से 10% रह गई है। इस शहर के हर गली मोहल्ले में अब इस्लाम का असर दिखता है। इस शहर के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं, इसके अलावा और भी ताज़ा तरीन खबरें पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप आइए bbchindi.com पर। और अब आपसे विदा लेने से पहले एक नज़र प्रमुख समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर एक समझौते को करीब 200 मुल्कों की सहमति हासिल हो गई है। बुरुंडी में सेना का कहना है कि शुक्रवार को ही हिंसा में 87 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी बुजुम्बुरा में हुई इस हिंसा में 8 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं। नाइजीरिया से आ रही खबरों के मुताबिक सेना और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय के बीच झड़पें हुई हैं। एक मानवाधिकार समूह इस्लामिक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि इसमें 30 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार की दौड़ में शामिल होने की कोशिश में लगे रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप और एक सऊदी राजकुमार के बीच कहासुनी शुरू हो गई है। सीरिया के होम्स में हुए बम हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि काफ़ी लोग घायल हुए हैं। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सऊदी अरब में आज हुए निकाय चुनावों के वोटों की गिनती हो रही है। इस चुनाव में पहली बार महिलाओं को वोट देने के साथ साथ चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी हासिल हुआ था। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत में फिलहाल इतना ही। एक घंटे बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दे रहे थे हमारे साथी राजेश चौहान।